पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, जिसमें आइए सुनते हैं शिक्षा विभाग की प्रोफेसर प्रकृति जेम्स से उनका व्याख्यान।
शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन प्रसारण तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।
नमस्कार प्रिय प्रशिक्षार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं बीएड मुक्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र समकालीन भारतीय शिक्षा की प्रथम इकाई, जिसका शीर्षक है आधुनिक शिक्षा का विकास। पिछली चर्चा में हमने भौतकालीन शिक्षा के बारे में जाना है, आज हम चर्चा करेंगे मध्ययुगीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। मध्ययुगीन शिक्षा व्यवस्था को मुस्लिमकालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, इसीलिए भारतवर्ष पर सबसे अधिक विदेशी हमले हुए हैं। भारत पर वस्तुतः मुस्लिम लुटेरों ने सबसे अधिक आक्रमण किए। मुस्लिम शासक भारतीय संस्कृति की जगह मुस्लिम संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की भी कोशिश करते रहे। फिर भी मुगल काल मध्यकालीन शिक्षा का स्वर्ण काल कहलाता है। इस काल में कला, संगीत, न्याय, कृषि, चिकित्सा, शिल्प कला आदि के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। मध्ययुगीन काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? धर्म का प्रचार, इस्लामी नैतिकता का विस्तार, ज्ञान का प्रसार, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, इस्लामी नैतिकता की प्रतिस्थापना, धन यश के साथ ऊंचे ओहदे पाना, राजनीतिक व्यवस्था का प्रचार, कला कौशल का प्रचार, धर्म प्रेरणा, सांसारिक सुख की प्राप्ति तथा राजनीतिक शिक्षा, इन्हें मध्ययुगीन काल में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कहा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। मध्ययुगीन काल में धर्म का प्रचार करना महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके लिए मुस्लिम शासकों ने मकतब या मदरसे खोले। भारत में मुसलमानों ने शिक्षा के द्वारा एक विशेष सामाजिक एवं लौकिक नीति का प्रचार किया। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य जनता के बीच ज्ञान का प्रकाश फैलाना भी था। मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना भी मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा मुस्लिम सिद्धांतों, कानून, सामाजिक परंपराओं तथा प्रथाओं का ज्ञान भारतीय मुसलमानों को कराया जा सकता था। मुसलमानों के नैतिक तथा चारित्रिक प्रतिमान हिंदुओं से भिन्न थे, इसीलिए इस्लामी नैतिकता की प्रतिस्थापना करने के कार्य में शिक्षा से विशेष रूप से सहायता ली जा सकती थी। शिक्षा में विशेष श्रेणी प्राप्त करने वालों को ऊंचे पद दिए जाते थे। मुस्लिम शिक्षा द्वारा इस्लामी कला कौशल का भी प्रचार किया गया। मुसलमानों को प्रेरणा देकर पूर्णतया धर्म परायण बनाना यह मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य था। इस उद्देश्य में ही मकतब तथा मदरसों की स्थापना मस्जिदों से जोड़कर की जाती थी। शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को मुसलमान, साक, काजी, वजीर तथा सिपा सालार आदि पदों पर नियुक्त करते थे। इस प्रकार मध्य युग में सांसारिक वैभव की प्राप्ति करना भी मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। मुस्लिम शिक्षा का अंतिम उद्देश्य देश में राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम शिक्षा का प्रसार करना परम आवश्यक। ये तो थे मध्ययुगीन शिक्षा के उद्देश्य। अब हम जानें कि इस समय की शिक्षा व्यवस्था क्या थी। मुस्लिम शिक्षा की दो प्रमुख संस्थाएं हुआ करती थीं। एक थी मकतब, दूसरा था मदरसा। मकतबों में प्राथमिक शिक्षा तथा मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। इनकी स्थापना साधारणतः मुस्लिम शासकों और धनी व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। इन शिक्षण संस्थानों में हिंदू छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता था। मकतब का अर्थ क्या है? मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से आया है। कुतुब का अर्थ है उसने लिखा। इस प्रकार मकतब का अर्थ है वह स्थान जहां लिखना सिखाया जाता है। मकतब के प्रधान आलिम होते थे। मकतब मस्जिद से ही संलग्न थे, अतः प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय एक से थे जिन्हें मकतब कहा जाता था। शिक्षा के प्रारंभ में बालकों का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। इस दिन बालक को नए कपड़े पहनाकर मौलवी उसे कुरान की भूमिका सुनाते थे तथा बालक से बिस्मिल्लाह शब्द कहलवाते थे। पाठ्यक्रम कैसा था, मकतब में क्या पढ़ाया जाता था? सर्वप्रथम बालकों को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता था। जब छात्रों को लिपि का भली प्रकार ज्ञान हो जाता था तो उन्हें फारसी भाषा और व्याकरण पढ़ाते थे। कुरान के आयतें रटना आवश्यक होता था। धार्मिकता एवं नैतिकता का विकास करने के लिए उन्हें कहानियां, फारसी कविताएं, गुलिस्ता और बौस्ता पढ़ाते थे। शिक्षण प्रणाली, मकतबों में मौखिक शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। कलम और कुरान की आयतें बिना समझे छात्रों को रटा दी जाती थी। यह विधि नाजिरा कहलाती थी। अब बात करते हैं मदरसे और उच्च शिक्षा के बारे में। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के लिए छात्र मकतब से मदरसा में प्रवेश लेते थे। मदरसे की विशेषताएं क्या थीं? मदरसे प्रबंध समितियों या दान देने वाले धनिकों द्वारा चलाए जाते थे। इनका क्षेत्र अंतर्राज्यीय होता था। राज्य की ओर से भी मदरसों को आर्थिक सहायता मिलती थी। यद्यपि राज्य में कोई शिक्षा विभाग नहीं था, फिर भी मदरसों को कुछ जागीरें दे दी जाती थीं, जिनकी आमदनी से शिक्षकों के वेतन तथा छात्रावास के खर्चे चलते थे। प्रत्येक मदरसे के पास एक पुस्तकालय होता था, जिनमें अनेक विषयों से संबंधित ग्रंथों का संकलन होता था। इस दौरान पाठ्यक्रम क्या था, यानी मदरसे में क्या पढ़ाया जाता था? शिक्षा में लौकिक तथा पारलौकिक दो तरीके की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषाएं थीं। लौकिक शिक्षा में अरबी, कानून, ज्योतिष, भूगोल, व्याकरण, चिकित्सा, गणित आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पारलौकिक शिक्षा का संबंध कुरान के गहन अध्ययन से था, जिसमें कुरान, सूफी धर्म तथा इस्लामी कानून आदि का ज्ञान दिया जाता था। मदरसों में दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इन छात्रों के लिए छात्रावास का प्रबंध भी था। ये छात्रावास शहर के बीच में रहते थे, जिससे उन्हें आवश्यक कार्यों में सुविधा होती थी। इस तरह मुस्लिम कालखंड में मदरसों का प्रबंध उत्तम हुआ करता था। फिर भी यह शिक्षा बहुत कम विद्यार्थी प्राप्त करते थे। राजकुमारों की शिक्षा राजमहल में ही बड़े बड़े विद्वानों, राजनीतिज्ञों तथा विशारदों द्वारा होती थी। मुस्लिम युग में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा था। वे धार्मिक नेता भी होते थे। वे सामाजिक एवं धार्मिक दोनों कामों में भाग लेते थे। धार्मिक होने के कारण वे बड़े ही त्यागी और पवित्र होते थे। वे छात्रों को पुत्रवत समझते थे। छात्र गुरु का सम्मान करते थे। छात्र मदरसों में छात्रावास में रहते थे। वे गुरु की सेवा करते थे तथा गुरु के जीवन निर्वाह संबंधी कार्यों में सहयोग भी देते थे। अब हम चर्चा कर देते हैं कि मध्ययुगीन कालखंड में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। पर्दा प्रथा के कारण सामान्य स्त्रियों के लिए शिक्षा लेना संभव नहीं था। उच्च घराने की स्त्रियों को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। उनकी शिक्षा का प्रबंध अलग से किया जाता था। लड़कियों के लिए अलग से परंतु कम मदरसे उपलब्ध थे। स्त्री शिक्षा के प्रमुख विषय धर्म ग्रंथों का मनन तथा गृह शास्त्र थे। घर पर शिक्षा प्राप्त करके अनेक महिलाएं विदुषी बनी, जिनमें नूरजहां, जहां आरा, मेहरुन्निसा, मुमताज महल, बेगम गुलबदन इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। दंड व्यवस्था, मुस्लिम कालखंड में दंड व्यवस्था अति कठोर थी। छात्रों को भूल करने पर कठोर दंड दिया जाता था। दंड प्रायः शारीरिक होता था। फिर भी योग्य और प्रतिभावान छात्रों को तमगे और संगे देकर पुरस्कृत भी किया जाता था। युद्ध प्रेमी होने के कारण मुसलमान शासकों ने सैनिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। राजकुमारों तथा पदाधिकारियों के पुत्र को सैनिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होता था। सैनिक शिक्षा के अंतर्गत तीर कमान, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, किला घेरना, सेना का संचालन इत्यादि पर अधिक ध्यान दिया जाता था। मध्ययुग में अनेक शिक्षा के केंद्र थे। इन शिक्षा केंद्रों में आगरा, दिल्ली, जौनपुर, मालवा, गोलकुंडा, लाहौर, गुजरात, फिरोजाबाद आदि का नाम उल्लेखनीय है। आइए अब हम जानते हैं कि मुस्लिम शिक्षा के गुण क्या थे। मुस्लिम कालखंड में शिक्षा में व्यापकता आ गई थी। अनेक विषयों को शिक्षा में सम्मिलित किया गया था। खुदा की प्राप्ति के लिए तथा सांसारिक और पारलौकिक सुख के लिए शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा पूर्णतः व्यावहारिक थी। छात्रों को भी उन विषयों को पढ़ने पर बल दिया जाता था जो उन्हें व्यावहारिक जीवन में जीविका उपार्जन के लिए दक्ष बनाते थे। इस कालखंड में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। मुस्लिम शासक अपने दरबार में विद्वान, साहित्यकारों तथा इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान करते थे। मुगल शासक स्वयं आत्मकथा लिखने में अत्यंत प्रवीण हुआ करते थे। गुरु शिष्य का संबंध निकट का था। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान था। गुरु की सेवा किया करते थे शिष्य। मध्य युग में परीक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं थी। अध्यापक यदि समझता था कि छात्र ने वांछित ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसे अगली कक्षा में भेज देता था। इस कालखंड में मुस्लिम शिक्षा का प्रसार करने के लिए राज्य तथा धनिकों द्वारा अनेक मकतबों तथा मदरसों की स्थापना की गई थी तथा इसके लिए वित्तीय व्यवस्था भी प्रदान की जाती थी। अब हम जानते हैं कि मध्ययुगीन शिक्षा के दोष क्या क्या थे। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा में अत्यधिक धार्मिक कट्टरता आने के कारण शिक्षा मस्जिद की चार दीवारों को पार कर जन साधारण के बीच नहीं पहुंच सकी। ये देखा गया कि स्त्री शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया था। शिक्षा में अरबी तथा फारसी इत्यादि भाषा का प्रवेश होने के कारण प्रांतीय भाषा का विकास नहीं हो पाया। कठोर दंड के कारण छात्र शिक्षा से दूर होने लगे। विषय को बिना समझे रटने का अधिक रिवाज मुस्लिम शिक्षा का मुख्य दोष माना जाता है। अस्थायी मकतब एवं मदरसा होना के कारण ये बंद हो जाते थे, क्योंकि देखा गया कि पैसों के अभाव में इनका संचालन संभव नहीं हो पाता था। मुस्लिम शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन एवं विषय की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई थी। पारलौकिक शिक्षा की अवहेलना की गई तथा शिक्षा में उच्च आदर्शों का अभाव पाया गया। ये थे मध्ययुगीन शिक्षा के दोष। इस प्रकार हमने आज मध्ययुगीन कालीन शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा पूर्ण की। इस चर्चा के बाद आपने मध्ययुगीन शिक्षा की विशेषता, इसके उद्देश्य, शिक्षा प्रणाली, इसके गुण तथा दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली चर्चा में हम मैकाले के घोषणा पत्र तथा वुड डिस्पैच के बारे में जानेंगे।
आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है, विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे, ये लक्ष्य हमारा।